الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. غیب کی دنیا کا موضوع ہمارا چل رہا تھا، جس میں آپ عزیزان کی خدمت میں غیب سے تعلق رکھنے والے مختلف امور اور موضوعات بیان کیے جا رہے تھے. ہم جس جگہ پر پہنچے تھے آج کے دن، جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے جنت اور جہنم. جہاں تک جنت اور جہنم کا تعلق ہے، تو یہ بحث اپنی جگہ پہ قدرے ایک طولانی بحث ہے، ایک تفصیلی بحث ہے. ہم اپنے طور پہ اس کو کوشش کریں گے کہ کچھ پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، اور اس میں پھر اس کو انشاءاللہ جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش انشاءاللہ العزیز کریں گے. کلمہ جنت اور جہنم آیات و روایات کا تفصیلی موضوع ہے، اور تمام ادیان میں اس کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، کیونکہ یہ قیامت، انسان کی جزا اور انسان کی پاداش سے متعلق موضوع بنتا ہے. قرآن کریم میں جنت اور جہنم کا، چونکہ آیات روایات دونوں نے اسے تفصیلی بیان کیا ہے، تو ہم ممکن ہے کہ آج کے دن احادیث کی طرف زیادہ نہ جا سکیں، کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہوگی. جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے، تو قرآن کریم کی آیات کا تعلق ہے، تو اس میں کئی خصوصیات اس کی بیان کی گئی ہیں. ہم اسی کو سب سے پہلے ملاحظہ کریں گے. ہم سب سے پہلے اس کا ایک لغوی تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے، یعنی اسے لغتاً جنت یا جہنم کس چیز کو کہتے ہیں. جنت اور جہنم کے جو لغوی معنی ہمارے پاس آتے ہیں، کلمہ جنت جیم نون اور نون سے مرکب ہے، جس کو کہتے ہیں تین حرفی اصل کلمہ ہے، جیم نون اور نون، تکرار کے ساتھ نون. اس کا عربی لغت میں معنی بنتا ہے ایک چیز کا پوشیدہ ہونا، یعنی اس کلمے سے جتنے بھی مشتقات یا اس سے جتنے بھی دیگر کلمات نکلتے ہیں، سب میں یہ معنی موجود ہے. کہ وہ معنی کیا بنتا ہے کہ پوشیدہ ہونا، ایک شے کا تستر یا ستر ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ کلمہ اس طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے موجب المقایس اللغہ میں. ابن فارس نے اسی طریقے سے اس کلمے کا تذکرہ کیا ہے. اسی مناسبت سے جن کلمہ بھی اسی سے مشتق ہے، کیونکہ جن انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جن کو، کیوں، پوشیدگی اور مخفی پن اس میں اصل معنی موجود ہے. جیم نون نون یعنی ہو ستر و تستر، کہ جو چیز بھی پوشیدہ ہوتی ہے، جس چیز کو مخفی رکھا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو اس کلمے سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثلا جنات یا جن، چونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جن کا نام دیا جاتا ہے. جنین یعنی شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے، اسے جنین کہتے ہیں، چونکہ وہ شکم میں پوشیدہ ہے، اس وجہ سے اس کو جنین کہا جاتا ہے. اسی طرح کلمہ جنت ہے. جنت چونکہ درختوں کی کثرت کی وجہ سے ایک جگہ ڈھمپ جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے، اس لیے اسے جنت کہا جاتا ہے. یعنی درختوں کے پتے جب ایک جگہ کو پوشیدہ کر لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت ہے. عربی زبان میں اسی کلمے کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم میں اس کا استعمال وارد ہوا ہے. کئی جگہوں پر اس کا استعمال اسی لغوی معنی میں وارد ہوا ہے. اچھا، اب ہم اسے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے کلمات کو قرآن کی نگاہ میں دیکھتے ہیں. یہ جیم نون نون، قرآن میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات اس کے اوپر چھا گئی، یعنی رات نے جب ڈھانپ لیا. ادھر آپ نے دیکھا ڈھانپنے کی وجہ سے اسے جنہ کا لفظ کہا جا رہا ہے. या कुरान ने ये बयान किया है, इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, कि जब तुम अपने माओं के शिकम में जिनीन की हालत में थे। अजिन्ना ये जिनीन की जमा है, यानी माओं के शिकम ने तुम्हें ढांपा हुआ था, घेरा हुआ था। इसी से कलमे जुन्ना ढाल भी आता है, इत्तखज़ू अईमानहुम जुन्नतन, कि उन्होंने अपनी ज़ाहरी कस्मों को अपनी ढाल बना लिया, कस्में खा के अपने आप को बचा लिया। क्योंकि ढाल वो होती है जो इंसान को दुश्मन से या ज़रर पहुंचाने वाली चीज़ से पोशीदा कर देती है, इस वजह से उसे जन्नत कहा जाता है। जुनून भी इसी से है, चूँकि वो अक्ल की वो पोशीदा कर देता है, इसलिए इसे जुनून कहते हैं। जैसे कुरान में आयत है, इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन, कि ये शख्स तो वो है कि जो मजनून है। नऊज़ु बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये तोहमत अरब लगाते थे। लेकिन जिन्ना कलिमा यहाँ पे जो आया, ये मजनून के यानी जिन ज़्यादा जुनून इसके ऊपर तारी है, यानी अक्ल को इसने छुपा दिया है या ढांप दिया है। इसी तरह बाग को भी जन्नत कहा गया है, और ये दुनियावी जन्नत भी कहलाती है। जैसे कि कम तरकू मिन जन्नत वयून, कि कितने हैं ऐसे अफराद जिन्होंने बागों को और चश्मों को अपने पीछे छोड़ दिया है। या औ तकून लक जन्नत मिन नखील वइनब, कि या आपके लिए जन्नत है जो कि खजूरों और अंगूरों से ढपी हुई एक जगह है, बाग है ऐसा। या वदखला जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, कि वो शख्स जन्नत में दाखिल हुआ, अपनी जन्नत में, अपने बाग में दाखिल हुआ, जबकि अपने नफ्स पर उसने जुल्म किया हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलमे जन्नत दुनियावी एक चीज़ के माना में इस्तेमाल किया जा रहा है। या कुरान में इसी तरीके से और आयात भी हैं, अस्हाबुल जन्नत यौमा इज़िन खैरुन मुस्तकर। अलबत्ता यहाँ पे इख्तलाफ है कि जगह पे जन्नत से मुराद उखरवी जन्नत है या यही मादी दुनियावी जन्नत है, क्योंकि कुरान करीम ने इसी, जैसे अभी आपने आयात को मुलाहिज़ा किया, कि इस दुनिया के अंदर भी बागात को जन्नत से ताबीर किया है। कुरान ने जिन जगहों के ऊपर ताबीर किया है इनवान से कि ये दुनियावी जन्नतें एक किस्म की हम कह सकते हैं, तो इन्हीं में से एक हमारे पास आयत कुरान करीम की सूरह नूह बनती है, व युमदिदकुम बे अमवालिम व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा, कि इस दुनिया के अंदर तुम देखो कि इससे पहले इरशाद बारी तआला होता है, व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि आसमान तुम्हारे ऊपर खूब अल्लाह ताला ने बरसाया है, यानी बारिश बरसाई है, पानी वहाँ से बहाया है। व युमदिदकुम बे अमवाल व बनीन, और इस दुनिया में तुम्हें अमवाल और बेटे दिए हैं। व यजअल लकुम जन्नात, और तुम्हारे लिए बागात इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला ने करार दिए हैं, और इन्हीं बागात में फिर व यजअल लकुम अनहारा और अस्हाबल जन्ना, इन लोगों को हम उसी तरह मुबतलाए आजमाइश करेंगे जैसे अस्हाब जन्नत को हमने मुबतलाए आजमाइश किया था। इधर जन्नत से क्या मुराद है, यानी बाग। बस दुनियावी जन्नत जो हमारे पास आती है वो बागात से ताबीर है। ये सूरह कलम की आयत है, सूरह नूह की आयत है, या इससे पहले जो आपकी खिदमत में आयात पढ़ी हैं, ये सारी की सारी आयात दर हकीकत जिस माना को रोशन कर रही हैं, वो माना हमारे पास दुनियावी जन्नत का एक माना देता है। जन्नत के अतबार से मुख्तलिफ ताबीरात हमारे यहाँ वारिद हुई हैं, एक किस्म की ताबीरात नहीं हैं। मिसाल के तौर पे दुनियावी जन्नत है, बरज़खी जन्नत है, उखरवी जन्नत में बरज़खी और क़्यामत की जन्नत सामने आती है। अब दुनिया के लिए भी कुरान कलमे जन्नत इस्तेमाल कर रहा है, अगरचे हमारे यहाँ ये वाला माना कम इस्तेमाल होता है या कलील इस्तेमाल है इसका, लेकिन कुरान करीम ने इसको इस तौर पे इस्तेमाल किया है। एक जन्नत की एक तकसीम हमारे पास अफ़ाल की जन्नत या इसी तरह सिफात की जन्नत और ज़ात की जन्नत है। ये जो जन्नत हमारे पास नौ जन्नत आ रही है, ये یہ عرفہ نے ایک تقسیم اس کی ذکر کی ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ جنت کا صرف ایک وہی اخروی معنی نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے مد مقابل ایک اور معنی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ دنیا کی آسائش پر آسائش اور نعمت سے بھرپور زندگی کو بھی جنتی زندگی سے تعبیر کیا گیا، یعنی باغات اور انسان کی پر آسائش زندگی۔ بہرحال ہم اسے لغوی معنی کے ضمن میں پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہر چیز جو پوشیدہ ہو تو وہ اپنی پوشیدگی کی وجہ سے کیا کہلاتی ہے، وہ جنت کہلاتی ہے۔ جنین ہے، جنون ہے، جن ہے، یہ سارے کے سارے کلمات، اور اسی طرح سے یہ کلمہ جنت آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ آئیں اب ہم جہنم کے کلمے کی بھی ایک تحقیق کر لیں کہ کلمہ جہنم کیا ہے۔ جہاں تک کلمہ جہنم کا معنی ہے تو بعض نے اس کا معنی یہ ذکر کیا کہ یہ گڑھے کا نام ہے، صحیح ہے، اور بعض نے ذکر کیا کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا نام ہے۔ اصل میں یہ کلمہ فارسی کلمہ تھا، جہنم فارسی میں کہا جاتا تھا، اس سے یہ جہنم کہا جانے لگا، یعنی عربی زبان میں ایک گڑھے کو غالباً کہا جاتا تھا یا اس طریقے سے۔ بہرحال اسے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ معرب ہے، فارسی سے عربی زبان میں یہ کلمہ منتقل ہوا ہے۔ اس کلمے کے ہمارے پاس جو معنی آتے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لہذا لسان العرب میں ذکر کیا گیا القعر البعید، بہت دور اگر ایک گڑھا ہو اسے جہنم کہتے ہیں، کیونکہ جنت سے یہ بہت فاصلے میں ہوگی، اس وجہ سے اس کو جہنم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جہنم کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ جہنم سے یہ کلمہ نکلا ہے، اور بہت دور گڑھے کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ فارسی کلمہ تھا اور فارسی کلمے سے عربی زبان میں ڈھلا، اور عربی زبان میں پھر یہ رائج ہو گیا، اور رائج ہونے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عذاب کے لیے جگہ قرار دی ہے، جو آگ کے لیے جگہ قرار دی ہے، جہاں پہ اللہ تعالی مشرکین یا کافرین یا معصیتکار مجرمین کو اللہ تعالی رکھے گا، اس جگہ کا نام ہے جہنم۔ لیکن لغتاً اسے کسے کس کیا نا ہمارے پاس معنی اس کے آگے، لغتاً ہمارے پاس دو معنی اس کے آگے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ القعر البعید، دور ایک گڑھے کا نام ہے، دور بعید ایک بہت بڑا گڑھا سا، یہ ایک بہت دور، ایک بہت بڑی جگہ جو گڑھا نما جگہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ خداوند متعال نے جو آگ بھڑکائی ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یہ قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارے پاس جنت اور جہنم کے عنوان سے ایک لغوی تحقیق ہو گئی۔ ہم اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کیا ایک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو نقطہ، مہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنت کی ایک اقسام ہے، اور ایک ہمارے پاس جنت کی اقسام کے ساتھ ساتھ خصوصیات ہیں، یعنی قرآن کریم نے اس کو دو طرح سے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ ایک ہیں اقسام جنت کی، اگر ہم قرآن کریم کی آیات سے اخذ کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے جنت کی خصوصیات، کچھ خصوصیات ہمارے پاس بن جاتی ہیں۔ جو ہمارے پاس جنت کی خصوصیات کے عنوان سے ہے یا اقسام کے عنوان سے، ہم پہلے اس کو مثال کے طور پہ قرار دے دیں کہ ہمارے پاس اس عنوان سے ایک بحث جو ہے، انہیں بتائیں کہ اس کی پر منتقل جنت کی قرآن کریم کی آیات میں خصوصیات بیان ہو سکتی ہیں۔ آخرت کے حوالے سے جو نقطہ، مہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، यानी अब हम कुरान के दायरे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने लुग़वी ताबीर देखी। कुरान में बाज़ औक़ात लुग़तन ये माना ज़िक्र किया गया है लुग़वी माना में, और इसी लुग़वी को एक इस्तलाही माना में भी, ख़ास आगे इस माने को भी बढ़ाया और ख़ास माना में भी इसे ज़िक्र किया गया। एक बहस इस ज़िम्न में है कि उसकी गुंजाइश अभी आप अज़ीज़ान के सामने नहीं है, कि कुरान करीम के कलेमात और अल्फाज और उनके मानी के बारे में क्या हमारे पास तहकीकी राय बनती है, क्योंकि कुरान के जो हकायक हैं वो गैर हमारे पास मादी या अकली मानी अकली हैं, और वो अकली मानी मादी गैर मादी दोनों हकायक को बयान कर रहे हैं। लेकिन इंसान यहाँ पर जो मौजूद है वो मादी दुनिया और हिस्सी दुनिया का एक आदी हो जाता है, इसलिए गैर मादी दुनिया उसके लिए काबिले दर्क या काबिले गौर व फिक्र नहीं रहती। अब कुरान ने हर दो को ले कर चलना है, एक वो अफराद हैं कि जो मादी दुनिया ही और हिस्सी दुनिया ही के आदी हो चुके हैं, एक वो हैं कि जो अहले अक्ल व फिक्र व नज़र करार पाते हैं और वो अकली मानी को समझ सकते हैं और अकली मानी को वो दर्क कर सकते हैं। लिहाजा इस मकाम के ऊपर कुरान करीम ने चूँकि तमाम हुदल्लिन्नास है कि तमाम लोगों के लिए ये हिदायत है, इसलिए कुरान ने इसको अल्फाज की दुनिया में करार दिया और अल्फाज के ज़रिए से फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रुश्त दिया, नशोनुमा दी हिदायत के ज़रिए से, ताकि वो हकाए के कुरानिया तक पहुँच सकें। लिहाजा जन्नत और जहन्नम दो इस कायनात के अंदर हकीकतें हैं, अल्लाह ताला की दो मखलूकात हैं, ये हमें सबसे पहले ज़हन नशीन रखना चाहिए। कुरान ने जिसको जन्नत करार दिया है वो जगह है जो नेमात से भरपूर है, तकलीफ़ दर्द रंज दुख गम इन चीज़ों का कोई उधर गुज़र नहीं है, कोई दर्द और तकलीफ़ नहीं है, कोई रंज उधर नहीं है, कोई मुसीबत उधर नहीं है। लिहाजा इस जगह को कुरान करीम ने इस मकान का नाम जन्नत रख दिया है, और वो जगह कि जो मुख्तलिफ़ तरह की अज़ियत तकलीफ़ तलखी कबाहत कराहत इन चीज़ों से पुर है या इन चीज़ों से वाबस्ता है, उसको कुरान करीम ने उस जगह का नाम जहन्नम करार दिया है। बस अभी हमें ये पता लग गया अगले मरहले में कि कुरान की निगाह में जन्नत और जहन्नम दो महल या जगह का नाम है, मकान का नाम है। जन्नत एक ऐसी जगह है कि जो नेमात इलाहिया से पुर है, जहाँ कमालात इंसानी पाए जाते हैं, जहाँ पे अयूब और नकाइस की बजाय उधर एक लज्जत है, शहवत है, या इसके अलावा और मज़ीद जन्नत की आगे किस्में करें तो उसमें लिका की नेमतें मौजूद हैं, उसके अंदर सुकून मौजूद है, रग़बतें मौजूद हैं। बस ये सारी की सारी खूबियाँ और कमालात जहाँ पे अल्लाह ताला ने नतीजे के तौर पे करार दिया वो जन्नत है, और इसके मद्दे मुकाबिल जहाँ तलखी है, जहाँ गम है, जहाँ कराहत है, जहाँ पे कबाहतें जमा हैं, उस जगह का और मकान का नाम अल्लाह सुबहान व तआला ने जहन्नम करार दिया। ये ज़ाहिर आयात से हमारे सामने मतलब उजागर होता है, आश्कार होता है। हम तीसरे मरहले पे आ गए। बस आपने एक लुग़वी यानी डिक्शनरी का माना देख लिया कि जन्नत जो जगह छुप जाए, उस छुपी हुई जगह को जन्ना या जुन्ना या इस तरह से जिन्ना वगैरह से ताबीर किया जाता है। जहन्नम कहते हैं बहुत दूर एक गड़े का नाम, या अल्लाह ताला ने जो आग और मुसीबतों के लिए जगह करार दी उसे जहन्नम कहते हैं। दूसरा, आपने कुरान करीम की निगाह में देखा नेमात ही नेमात हों और किसी किस्म की तलखी और गम और दुख और अजाब जहाँ पे मौजूद ना, उस मकान को जन्नत से ताबीर किया गया है, और इसके मुकाबले में जहाँ फ़कत तलखी और गम और दुख और कबाहतें और कराहतें जमा हों, उसका नाम जहन्नम करार दिया। तीसरे मरहले पे अब यहाँ से आपके सामने जन्नत की तकसीम आ जाती है, कितनी किस्म की जन्नतें हैं। अब कुरान के वही हमारे पास जो हमेशा से एक बहस रही है, एक दफ़ा निगाह फुकाहा व मुफस्सरीन व मुहद्दिसीन है जिन्होंने ज़ाहिर आयात से इस्तफादा करना है, और एक हमारे पास निगाह है फ़लासफ़ा व उरफ़ा की। इन दोनों का अंदाज़ गुफ्तगू यहाँ पे जुदा हो जाता है। अगर आप ज़ाहिर आयात रिवायात और कुरान करीम की ज़ाहरी आयात से अगर आप इस्तफादा करें तो वाज़े तौर पे आपको मालूम होता है दुनिया के अंदर भी एक जन्नत और अजाब है, बरजख में भी जन्नत और जहन्नम है, और कयामत में भी जन्नत और जहन्नम है। हम लोग जिस चीज़ को सुन के इस वक्त कायल हो चुके हैं, वो सिर्फ़ कयामत की जन्नत और जहन्नम के हम लोग आदी हैं। यानी अमूमन हमारे माशरे के अंदर किसी भी आलम इस्लाम में अगर कल मैं जन्नत या जहन्नम बोला जाए तो उससे अमूमन मुराद क्या लिया जाता है कि जो आखरत में जन्नत और जहन्नम है। लेकिन कुरान करीम की तरफ आएँ तो कुरान ने दुनिया के अंदर भी कलमा जन्नत, दुनियावी आसाइश, पुरआसाइश और नेमात से भरी हुई ज़िंदगी के लिए जन्नत का कलेमा इस्तेमाल किया है। इसी तरह दुनिया के अंदर भी अज़ाब अल्लाह ताला ने इस्तेमाल कलमा अज़ाब इस्तेमाल किया है। और अभी अर्ज़ किया जैसे कि जहाँ पर अज़ाब होगा, जिस जगह पर आग इंसान के लिए है, तकलीफ़ है, दुख है, दर्द है, उस मकान का नाम जहन्नम अल्लाह सुबहान तआला ने करार दिया है। इस तौर पे हम कह सकते हैं ये दुनियावी जहन्नम है। मसलन बरज़खी जन्नत और जहन्नम के अभी हम इंशाल्लाह उसे हम मुतालिया करेंगे, आपके सामने कदरे उसे इजमाल के साथ जिक्र किया जाएगा कि उधर भी जन्नत और जहन्नम है। और एक जन्नत और जहन्नम हमारे पास क़यामत की है। हम दुनियावी वली को पहले मुलाहिज़ा करें, आपके सामने जो मैंने आयात मुबारक तिलावत की वो दुनिया की जन्नत की तरफ वाज तौर पर रहनुमाई करती है। जैसे सूरह कलम की आयत थी, गालिबन 17 नंबर आयत थी, कि जिसमें अस्हाबुल जन्ना का तस्करा वारिद हुआ है कि हम इन्हें इसी तरह से मुबतला या आजमाइश करेंगे जैसे अस्हाब जन्नत यानी बाग वालों की आजमाइश की थी। कि कुरान की ये आयत चूँकि एक वाक़े की तरफ इशारा करती है, और वो वाक़े मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ इन्हीं आयात की बदौलत। कि सूरह कलम में आयत नंबर 17 से आगाज़ होता है इस वाक़े का, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, कि हम इन लोगों को इसी तरह आजमाइश में मुबतला करेंगे जैसे अस्हाब जन्नत को मुबतला किया। आपने अपनी तवज्जो इस तरफ रखनी है कि इधर कलमा जन्नत जो इस्तेमाल हुआ है, हमें कुरान की ज़ाहरी आयत से क्या महसूस होता है? वो दुनिया के अंदर जो पुरआसाइश और पुरनेमत ज़िंदगी है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है या बरज़ख़ के लिए, क़यामत के लिए? आपने इधर तवज्जो रखनी है। इज़ अक़सम लयसरमुन्नहा मुसबहीन, कि उन्होंने कसम ये खाई थी आपस में, पक्का और मोहकम इरादा किया था कि सुबह सवेरे उठ के हम ये फल चुन लेंगे। वला यस्तस्नूना, और किसी एक को भी हम मुस्तस्ना करार नहीं देंगे। फताफ अलैहा ताइफुन मिन रब्बिका, रात को अल्लाह की तरफ से आंधी तूफान एक गर्दिश करने वाली चीज़ आई, वहुम नाइमून, जबकि ये लोग गहरी नींदे सो रहे थे। फअसबहत कस्सरीम, और जो अल्लाह की तरफ से ये आई थी उसने इसको भूसे की मानिंद पूरे बाग को बना दिया। तो ये असल में मसला इस तरीके से था कि चंद भाई थे, 4 भाई थे गालिबन, और उनके जो वालिद बाप था उनका बहुत बड़ा बाग था। बाप जो है वो बाग में जब फल उतार लेता या फल उतारने का वक्त आता तो सबसे पहले फ़ुकरा में तकसीम करता था, और फ़ुकरा की एक लंबी लाइन बन जाती थी। वो किसी को भी ना झिड़कता था और ना ही ना उम्मीद करता था, और सबसे पहले फ़ुकरा को देने के बाद फिर बकिया माल वो ले जाया करता था। इनके जो बच्चे थे ये कहते थे कि हमारा जो वालिद है वो बहुत ही नादान है, बहुत सादा और भोला बंदा है, भला इन लोगों को इतनी लंबी कतार को देने का क्या फ़ायदा, इन्हें आखिर में दिया जा सकता है, पहले अपने नफ़ा को देखे, पहले अपने बाज़ार तक उसे पहुंचाए, उसकी कीमत लगाए, उसके बाद ये सारे काम करे और जिसको फ़कीर और साहिल को देने। जैसे हमारे माशरे में भी राइज है कि जो चीज़ घर के इस्तेमाल की नहीं रहती वो उठा के चलो मदरसे को दे दें या फ़कीर को दे दें, पुराने कपड़े सारे निकाले, फ़ुकरा को पकड़ा दिए। इसी तरीके से इन बच्चों की भी सोच थी कि साहिल और फ़कीर को हमेशा पुरानी चीज़ देनी चाहिए या आखिर में बची हुई चीज़ देनी चाहिए। लेकिन इस बाप की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो हमेशा जब नया फल लगता, दरख्तों से उतारने का वक्त आ जाता तो सबसे पहले फ़ुकरा को देते, और फ़ुकरा भी दूर से देखते रहते थे कि अब वो फल पक गए हैं या नहीं, तो बाग के बाहर एक लंबी लाइन लग जाया करती थी। हुआ यह कि वालिद की वफ़ात हो गई, वफात हो गई तो अब बाग भाइयों के हाथ में आ गया। तो इन्होंने कहा कि हम अपने बाप जैसे नादानी और भोलेपन का शिकार नहीं होंगे, हम इससे तिजारत करेंगे, इस माल को हम लगाएंगे और थोड़ा बहुत जो भी आखिर में बचा वो हम फकीरों को दे देंगे। इसलिए हर रोज़ आते देखते, और उस साल बाग में फल भी बड़ा खूबसूरत और तरोताज़ा और कसरत से लगा, खूब कसरत से माल लगा। और हर रोज़ आके वो फिर बड़े बड़े मंसूबे बनाते, इस दफ़ा तो हमें बड़ी कीमत मिलेगी और इतना हमें मुनाफा हो जाएगा। और इनमें से एक भाई था कि जो ये कहता था कि नहीं, हमें इस हवाले से सोचना चाहिए, हमारे बाप की रविश भी थी। तो खुलासे कलाम, आ गया वो दिन कि जब उन्होंने उन फलों को उतारना है और पहुंचाना है। अब फ़कीर उधर लाइन पे लाइन लगा के बैठ गए, इन्होंने फ़कीरों को भगा दिया, पहले ही भगा दिया कि अगले दिन हमारे सर पे ना चढ़ दौड़े। तो इसलिए अब आखिरी दिन, जब जिस दिन उन्होंने उतारना था, उसी रात एक तेज़ आंधी तूफान और बिजली उसके ऊपर गिरी। आंधी तूफान के साथ साथ बिजली चमकी और राख का ढेर बाग को बना दिया। तो तब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ और उनके भाइयों में से एक भाई ने फिर कहा कि काला औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, कि तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह ताला का डर और खौफ करो। कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तो उन्होंने कहा कि हमारा रब जो है वो पाक और मुनज़्ज़ा है, बेशक हम लोग ही ज़ालिमीन में से थे। फ़अक़बला बाज़ुहुम अला बाज़िन यतलावमून, तो उनमें से बाज़ दीगर बाज़ को फिर मलामत करने लगे। तो ये कुरान करीम की आयत है, और इसी आयत में आयत नंबर 35 बहुत अहमियत की हामिल आयत है। अफ़नजअलुल्मुस्लिमीन कल्मुजरमीन, कि क्या हम मुस्लिमीन के साथ मुजरमों को भी ठहरा देंगे? यानी जो अंजाम हमने या जो मकाम मुस्लिमीन का करार दिया है, तो ये मुजरिम ये तवक्को रखते हैं, ये सोचते हैं कि इनके साथ हमें भी अल्लाह ताला शामिल कर लेगा। तो कुरान खुद कहता है कि इन्होंने कितना बुरा हुक्म लगाया, मा लकुम कैफ तहकुमून, कि क्या तुम लोग सोचते हो और कैसी बातें करते हो। इस आयत में आपने मुलाहिज़ा किया, वाकया हमारे लिए नसीहत के काबिल भी था। इसलिए इस अमर में भोला बनना वो जीरकी है, वो दानाई है, वो चलाकी है। इस दुनिया का माल दे के आखरत को ख़रीद लेना ये दानाई है। इधर आपने मुलाहिज़ा किया कि पूरा बाग अल्लाह ताला ने जला दिया। अच्छा, अब हम आते हैं इधर, हमने देखा कि इधर अस्हाबुल जन्ना, इस बाग को जन्नत कहा और इसके मालिकान को अस्हाबुल जन्ना से ताबीर किया। इसी तरह सूरह नूह की आयत आपने देखी, व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा, या इसी तरीके से कि वो शख्स अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और वह हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिही, जबकि वो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किए हुए था। ये दुनियावी जन्नत से सारा को ताबीर होता है। हम इधर ही इसी ज़िम्न में ये भी मुतालिया कर लें कि अजाब के बारे में भी इसी तरीके से हमारे पास आयत है। जैसे कि कुरान करीम ने सूरह सबा आयत नंबर 14 को आप मुलाहिजा करें, एक तो हमारे पास अंबिया अलैहिस्सलाम की कौमों पर जो दुनियावी अजाब नाजिल हुआ वो बेहतरीन दलील है कि अजाब दुनिया, यानी उनके लिए ये दुनिया भी जहन्नम बनी, क्योंकि दुनिया के अंदर तलखियाँ, दुनिया के अंदर सख्तियाँ, दुनिया के अंदर कबाहतें और कराहतें, ये जहन्नम से ताबीर हैं। एक दफ़ा इसी जिसे हम जहन्नम से ताबीर करार दे रहे हैं, इस्तलाही तौर पर भी इसको अजाब कहा, बाज़ को तो अल्लाह ताला ने हलाकत के लिए अजाब का शिकार किया और उसके अंदर भी रहमत शामिल है, लेकिन बाज़ के लिए अल्लाह ताला ने तलखियाँ रखी हैं ताकि वो रुश्त करें, नशोनुमा पाएँ। जैसे आप देखते हैं कि मकई के दानों को आग के अंदर जब आप डालते हैं, मसलन गरम रेत में या गरम हरारत उसे देते हैं, तो वो अंदर से जो कुछ अंदर होता है वो खोल के बाहर ले आता है, जिसे पॉपकॉर्न आप कहते हैं। यही तलखियों का इस दुनिया के अंदर फ़लसफ़ा है। अल्लाह सुबहान व तआला ने हर इंसान को इस दुनिया में इसलिए इम्तहान में मुब्तला किया है, इसलिए आजमाइशों में, तलखियों में, यानी तलखी आजमाइश जब हम लफ्ज़ बोलते हैं उससे फ़कत मुसीबत मुराद नहीं है, नेमत भी आजमाइश है और निकमत भी, यानी कह लें मुसीबत भी आजमाइश है। लिहाजा हर दो आजमाइश इस वजह से हैं ताकि हम अंदर जो कुछ रखते हैं वो उसे अमलन बाहर ले आए। जिस तरह से ये मकई के दानों को गर्म रेत के अंदर जब डालते हैं या हरारत पहुँचाते हैं तो अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिसे आप पॉपकॉर्न कहते हैं, या इसी तरह बीज जो है वो निकल के पौधा बन जाता है जब उसे ज़मीन के अंदर एक तलखी और मुसीबत और अंधेरियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपने मुलाहिजा करना है कि दुनिया के अंदर भी एक जो मुशक्क़त आवर काम है उसे अज़ाब से अल्लाह ने ताबीर किया है। आएँ कुरान करीम की हम इस आयत को मुलाहिजा करें। सूरह सबा में इरशाद बारी तआला होता है, फ़लम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हमने मौत को जारी किया, मा दल्लहुम अला मौत ही, तो उनकी मौत के ऊपर किसी चीज़ ने रहनुमाई नहीं की, यानी किसी को पता ही नहीं लगा कि ये वफात पा चुके हैं। इल्ला दाबतुल अर्द, सवाए वो ज़मीन के कीड़े, तकुलु मिन सअतहू, कि जो उनका असा खा गए, फलम्मा खर्रा, और जब वो असा खा गई यानी वो उसे दीमक चाट गई, इतना अरसा जो है वो ज़मीन के ऊपर उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि देखने वालों को कि ये वफात पा चुके हैं। मा दल्लहुम अला मौत ही, उनकी मौत के ऊपर किसने रहनुमाई की, किसने बताया कि इनको वफात हो चुकी है, इल्ला दाबतुल अर्द ताकुलु मिन सअतहू, कि उनके उस असा को जिसके साथ वो टेक लगाए हुए थे, जो चीज़ भी थी उसको जब वो दीमक या कीड़े खा गए, तो फलम्मा खर्रा, जब वो औंधे मुंह जा के फिर गिरे, तबयनतिल जिन्नो, तो तब जिन को वाज़े जिन्नात को पता लगा और तब उन्होंने ये बात की, अन लौ कानु यअलमूनल गैब, अगर वो लोग गैब को जानते, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इस अहानत और ज़िल्लत वाले अज़ाब में हम मुब्तला रहते, हम कभी भी फिर ये पढ़ ना रहते। इधर आपने मुलाहिज़ा किया है कि जिन्नात ने फिर क्या किया, वकालतिल जिन, यहाँ पे जिन्नात ने फिर फलम्मा खर्रा तबयनतिल जिन, कि जब जिन के लिए यानी जिन्नात के लिए ये जाहिर हो गया कि वो ऊंधे मुँह गिर गए और वफात पा चुके हैं, तो तब उन लोगों के लिए बात जाहिर हुई और कुरान करीम उन्हें यह पैगाम दे रहा है कि ये गैब नहीं जानते, जन्नात के पास इल्म गैब नहीं है। वह अन लाओ कानू, कि अगर ये लोग, या अलमूना, अगर ये लोग जानते होते, किसको, अलगैबा, ये लोग, ये जन्नात गैब को जानते होते, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इस सख्त मुशक्क़त आवर ज़िल्लत आवर अज़ाब में ये लोग ना पड़े होते। इधर हमने देखा कि वो जिन्नात चूँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू आए हुए थे और काबू आने की वजह से वो सारे के सारे उनके सामने बड़े जहमत और मेहनत और मुशक्क़त की वजह साथ काम करते थे, चूँकि वो समझ रहे थे कि हमारी निगरानी अल्लाह ताला ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलसल कर रहे हैं। तो अब इस मुशक्क़त आवर काम जो है उसको क्या कुरान ताबीर कर रहा है, अलअज़ाब अलमुहीन। आपने मुलाहिज़ा किया कि इस तलखी और मुशक्क़त और सख्ती का अल्लाह सुबहान व तआला क्या इसको बयान कर रहा है कि ये अज़ाब मुहीन है। इस जगह पे एक बड़ा ख़ूबसूरत जुमला है शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का, वो ये कहते हैं कि जो दुनिया का ज़ाहिर ये बातन जहन्नम है, यानी अगर आपने जन्नत को बातें जहन्नम, जहन्नम को अगर किसी ने देखना है, ये उसका जाहिर जो है वो ज़ाहिर दुनिया को मुलाहिजा करे, यानी हमारे पास हकीकतें जो जहन्नम है वो इसी तरीके से है कि जैसे दुनिया की ये ज़िंदगी है कि हर अमर में दर्द है, तकलीफ़ है, दुख है, मुश्किलात हैं, तो ये हमारे पास एक ज़ाहिर दुनिया जो है तर हकीकत यही हकीकत जहन्नम भी बन जाती है। अलबत्ता इसको एक और ताबीर के साथ ज़िक्र किया जा सकता है कि उसकी तफसीर अभी हमारे पेश नज़र नहीं है, या ये हम कह सकते हैं कि जन्नत जो है वो इसी का फल है, जहन्नम की आग से जन्नत जो है हमारे सामने तश्कील पाती है। उनकी मुराद यही है कि इस दुनिया के अंदर तलखियाँ और मुसीबतें जब इंसान को नसीब होती हैं, इसके नतीजे में इंसान अगर इस्तेकामत दिखाए, ईमान के ऊपर उस्तवार रहे, तो अब उसके लिए ये आगे की ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी बन जाती है। बाल्फाज दीगर, मादी जन्नत और मादी तलखियां जिसको आप जहन्नम दुनिया से भी ताबीर एक नौ कर सकते हैं या अजाब दुनिया से भी एक नौ ताबीर कर सकते हैं। अलबत्ता अजाब का कलेमा अल्लाह ताला की नाफरमानी में कुरान करीम ने जिक्र किया है, अमूमी माना में जिक्र नहीं है। आप इसको इस तौर पे कह सकते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए मिसले जहन्नम है, काफिर के लिए जन्नत अल्लाह ने करार दी है। इसलिए काफिर की ये रवायात के भी अल्फाज हैं कि जन्नतुल काफिर, दुनिया क्या है, काफिर की जन्नत है, लेकिन मोमिन के लिए क्या है, सिजन है, जेल है, जिंदान है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि कुरान ने जहन्नम किस जगह का नाम दिया, जहाँ तलखियाँ हैं, सख्तियाँ हैं, मुसीबतें हैं। तो इस तौर पर हम ये ताबीर समझाने के एतबार से कह सकते हैं, क्योंकि कलमे जन्नत तो अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए इस्तेमाल किया है, जहन्नम का लफ्ज़ दुनिया के लिए ज़ाहरी तौर पे, जहाँ तक बहरहाल अपने मुताले के दायरे में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुमकिन है कि आयात में मज़ीद तहकीक की जाए तो कोई ऐसी आयत सामने आ जाए कि जहन्नम का लफ्ज़ दुनिया के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान करीम में, लेकिन कलमे जन्नत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो जहन्नम के हम लुगवी मायनी हैं, अगर उसकी रियायत करें तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में मुसीबतें, तलखियाँ, ये बिलआख़िर ज़्यादा हैं इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में कोई शख्स भी नेमात के दायरे को वसी नहीं कर सकता, क्योंकि नेमात ज़्यादा हो जाएं वो एक और तर्ज की मुसीबत बन जाती है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि अमूमन एन्जाइटी के मरीज़, ये जो साइकोलॉजिकल एक मरज़ इंसान को लाहिक होता है, अमूमन वो लोग गिरफ़्तार होते हैं एन्जाइटी के इस मरज़ में कि जो बड़ी मुरफ़ा और बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, यानी उन्हें खाने पीने और दुनिया के अंदर कोई ख़ास नहीं तकलीफ़ और दर्द और मुसीबत पेश आती। तो दुनिया की नेमतें कसीर हो जाएं तो वो ख़ुद एक और नौ की मुसीबत है। इसलिए मुसीबत का पलड़ा दुनिया के अंदर ज़्यादा है, तलखी का पलड़ा, दर्द और रंज और गम और फना, ये दुनिया के खसूसियात इसकी निस्बत ज़्यादा हैं कि जिसको आप नेमत के तौर पर शुमार करते हैं, क्योंकि हर नेमत तकलीफ़ और दर्द और तलखी को लिए हुए है। बाल्फाज़ दीगर, नेमत तो फना हो जाएगी लेकिन दुनिया के अंदर तलखी वो साथ इंसान के रह जाती है, यानी जवानी ख़त्म हो जाएगी, बुढ़ापा आपका चलता रहेगा, सेहत ख़त्म हो जाएगी, मर्ज़ आपके साथ लगा रहेगा, इसी तरीके से माल आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। तो खुलासे कलाम, हर नेमत अपने साथ तलखी और मशक्क़त इस दुनिया के अंदर रखती है। ये जन्नत और जहन्नम दुनियावी का तस्करा आपके सामने हो गया। हम अब आगे बढ़ते हैं। अमूमन हमारे यहाँ जो राइज कलिमा जन्नत और जहन्नम है वो उखरवी जिंदगी के लिए है, यानी बरज़ख़ और क़यामत के लिए है। इस जगह पे जन्नत की खसूसियात जो उखरवी जन्नत है, बरज़खी और क़यामत में जो जन्नत है, इसी तरह उखरवी जहन्नम यानी बरज़ख़ और आखरत क़यामत में जो जहन्नम है, उसकी खसूसियात कुरान ने ज़्यादा जिक्र की। यानी कुरान करीम में अक्सर बेशतर कलमाए जन्नत और कलमाए जहन्नम या कलमाए नार वो इस्तेमाल हुआ है उखरवी इंसान के उस ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, अगर हम उखरवी, क्योंकि मादी दुनिया में तो आपने देख लिया, उखरवी तौर पे भी देखें तो यहाँ पे चंद खसूसियात हमारे सामने आती हैं। खसूसियात जन्नत और जहन्नम एक तफसीली हमारे पास टॉपिक बन जाता है कि अभी हम उसमें वारिद नहीं होते। हम अपनी अभी फुकहा, मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन के तर्ज के ऊपर तकसीम को मुतालिया कर रहे हैं। मैं इसके बाद दूसरी तकसीम जो फ़लासफ़ा और औरफा की नज़र में है वो ज़िक्र मैं अभी आपकी खिदमत में करूँगा। जहाँ तक ज़ाहिर कुरान करीम की आयात के ज़ाहिर से इस्तफादा करें तो ये मतलब हमारे सामने आशकार होता है कि जो उखरवी हमारे पास जन्नत है वो फ़कत और फ़कत पाकीज़ा और ताहिर लोगों के लिए है। किसी किस्म की कबाहत, किसी किस्म का जुर्म, किसी किस्म का मुजरिमपन, किसी किस्म के जलीलो ख़ार और पस्त अफराद वो इस मकाम पे नहीं होंगे। कुरान की कई आयात हमें ये बात बताती हैं कि जन्नत वो पाकीज़ा तरीन अफराद की एक जगह है और जहन्नम वो मुजरमीन और बदकार और बदतरीन लोगों की एक जगह है। बस आपने یہ پہلی خصوصیت مطالعہ کی، یہ خصوصیت ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل جگہ حامل چیز بن جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھے ہیں ہمارے لیے، مقام دونوں رکھے ہیں، یعنی مومنین و مسلمین کے ساتھ مجرمین مکس ہیں، یعنی اگر آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں تو حابیل کے ساتھ قابیل بھی فرزند ہیں، دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے گھر میں نافرمان بیٹا بھی ہے اور زوجہ بھی، جو نافرمان زوجہ بھی ہے، اور متی ان کے فرزندان بھی ہیں. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے لے لیں کہ بچے فرما بردار ہیں تو ایک فاسق نافرمان ان کی زوجہ بھی ہے. فرعون کی مثال لے لیں کہ خود فاسق فاجر ہے لیکن ان کی زوجہ وہ پاکیزہ، اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ ایک با ایمان ہستی ہیں. وعلیکم السلام. یہ ہمارے پاس نقطہ روشن کرتا ہے کہ دنیا میں تو مکس رہ رہے ہیں، جیسے بھی امام علی علیہ السلام کے ارد گرد افراد اکٹھے ہو سکتے ہیں، مجرمین بھی مسلمین بھی. جیسے بھی ہم اپنے طور پہ کئی یزیدی اور اموی خصوصیات اور خصلتیں رکھتے ہوں گے، لیکن تقاضا کریں گے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں. بعض ایسی شخصیات گزری ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں معروف تھا کہ ہر حاکم کی طرف سے وہ نمائندہ بھی بن جاتے تھے، کوئی بھی آئے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہوں یا بسر بن ابی ارطہ کے شام کے باغیوں کی طرف سے ایک دہشت گرد کو بھیجا اور اس نے اپنا نمائندہ اپنے پیچھے حضرت ابو ہریرہ کو بنا کے رکھا. تو وہ جب چلا گیا تو اس نے پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی حضرت ابو ہریرہ نے بیعت کر لی. یعنی ان کے لیے ہر دو ٹھیک ہیں، انہوں نے تو فقط نماز پڑھنی ہے، وہ ہر دو کے ساتھ ایڈجسٹ بندے ہیں، ان کے لیے فرق اس چیز سے نہیں پڑتا. تو یہاں پہ یہ مکس ہے، لیکن اگلا جہان اس طرح نہیں ہے. قرآن کی واضح آیات ہیں کہ اگلے جہان میں مسلمین اور مجرمین ایک ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اگلے جہان میں فاسقین، کافرین، مشرکین، منافقین اور اسی طرح سے مومنین، صالحین، عابدین، یہ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے جنت وہ جگہ ہے جہاں فقط اور فقط صالحین و متقین و مومنین و مسلمین ہوں گے، یعنی فقط طاہر اور پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. یہ پہلی خصوصیت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد دیگر خصوصیات قرآن نے ذکر کی ہیں. اگر آپ نے ترتیب بھی بنانی ہے خصوصیات کی جنت اور جہنم کے حوالے سے، ایک تو دنیا کی جنت جہنم آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ اس دنیا کے اندر بھی ایک جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جہنم، اور اس میں اسی عمل کی رعایت کی گئی ہے، لیکن مادی دنیا کی زندگی کے مطابق ادھر کی جنت اور جہنم کی خصوصیات ہیں، برزخی زندگی کے مطابق برزخی جنت اور جہنم کی خصوصیات ہیں، اور قیامت کے اندر جو جنت اور جہنم ہے وہ اسی جہان کی خصوصیات کے مطابق ہیں. اس دنیا کے اندر چونکہ مقام ابتلاء اور آزمائش ہے یہ جگہ، اس لیے ادھر جو جنت اور جہنم ہے وہ اسی خصوصیت سے وابستہ ہے. اس لیے ادھر اجتماعی زندگی ہے، ادھر فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ادھر نعمت ملے گی وہ زائل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اختیار کی صورت موجود ہے، انتخاب کی صورت موجود ہے، اگلے جہان دونوں اس طرح نہیں ہیں، نہ برزخ نہ جہنم. لیکن دنیا کے اندر جو جنت ہے اس کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ صرف صالحین کے لیے ہے، بلکہ الٹ ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے آئمہ اطہار علیہ السلام معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عذاب استدراج اللہ تعالیٰ نے جو قرار دیا ہے وہ ہے ہی نعمات کے ہمراہ، اور سب سے سخت ترین اللہ تعالیٰ کا عذاب قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وہ یہی استدراج ہے. وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا يَا نُمْلِي لَهُمْ، قرآن نے متعدد آیات میں عذاب استدراج کا تذکرہ کیا کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور نعمات ہم انہیں دیں گے تاکہ یہ لوگ ڈوبتے چلے جائیں اس عذاب میں. لہذا دنیا کے اندر یہ خصوصیت ہے دنیا کی جنت کے لیے کہ دنیا کی جنت میں عذاب پوشیدہ ہے، اور دنیا کی تلخیاں اگرچہ مومن کے لیے مثل جہنم ہیں، کہ اگر جہنم نہ بھی کہیں مثل جہنم ہے دنیا، اور عذاب بھی کافرین کے اوپر اس دنیا کے اندر آتا ہے، لیکن یہ جو مثل جہنم ہے اس کے اندر اخروی جنت چھپی ہوئی ہے. اس لیے واضح الفاظ میں امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ इन अल जन्नता खुफ्फत बिल मकारह, ये उखरवी जन्नत की बात है। उखरवी जन्नत अल्लाह ने नागवार और कभी और मकरूह नापसंदीदा चीज़ों में घेर के रख दी है। हो नहीं सकता कि इस दुनिया में कोई शख्स आसाइश की ज़िंदगी बसर करे, आखिरत में जन्नत पा ले, मुमकिन ही नहीं है। ये तमाम आयात और रवायात का वाज़े निचोड़ है। यानी किसी की ज़िंदगी का हम तायुन उसकी ज़ाहरी मसलन महल नुमा घरों से, बेहतरीन गाड़ियों से, अच्छी खुराकों से और उसके इदारों के ऊपर हाकमियत से नहीं उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता, क्योंकि इसके बावजूद हो सकता है वो इंतहाई तलखियों में ज़िंदगी बसर कर रहा हो। उसे अपनी मसलन ज़िल्लत का एहसास हो, ज़ाफ़ का एहसास हो, उसको मुख्तलिफ अमराज से सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ मोहताजियों का उसे सामना करना पड़ता है। अंदर से एक बंदे का अगर अंदाज़ा लगाना है तो वो इस ज़ाहरी असबाब व माल व दौलत से नहीं लगा सकते। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ी दिक्कत करनी चाहिए कि उखरवी जन्नत क्या है। बिलमकारह, दुनिया में तकलीफ़ दे ज़िंदगी, दुनिया में अजियत वाली ज़िंदगी, वो आखरत में जन्नत का सबब है। व इन्न जहन्नम हुफ्फत बिल लज्ज़ात व शहवात, कि जो जहन्नम उखरवी है वो लज्जतों और शहवतों में अल्लाह ने घेर के रख दी है। लिहाजा उखरवी जहन्नम वो बनती ही लज्जतों और शहवतों के ज़रिए से है। या लज्जतें शहवतें ज़रूरी नहीं है कि हमें मिलें भी, अंदर तमन्नाएं होती हैं। जैसे बहुत सारे फुकारा हैं कि अंदर इंतहाई हरीस, इंतहाई शहवानी अंगीज़े लिए हुए और इंतहाई पस्त अपने आप को दुनिया के अतबार से रखे हुए, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती इस दुनिया के अंदर। ये दुनिया में भी पस्त तरीन रहा, आखिरत में भी पस्त रहेगा। खुलासे कलाम कि दुनिया के अंदर जन्नत का मिलना अजाब इस्तदराज की तरफ भी इशारा हो सकता है। यानी दुनिया की अगर जन्नत नुमा ज़िंदगी हो तो, जैसा कि उमर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी एक सहाबी थे, यजीद बिन उमर उनका नाम था, वो आए और कहने लगे कि या इमाम, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं अजाब इस्तदराज में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों ऐसा तुम्हें एहसास होता है? तो कहा कि मेरे पास खूब माल और दौलत है, बेहतरीन सवारियां हैं, कसीर ग़ुलाम हैं, बड़े बेहतरीन नफीस कपड़े मैं पहनता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे मोहताज किसी का नहीं रखा। अब अंदर उसे देखें गम है, अंदर हुज्न है उसके, मसलन नमाज शब के लिए अपनी नींद को बर्बाद करता है, रोज़े रख के अपने शिकम को खाली रखता है, ये सारे अमाल कर रहा है लेकिन ज़ाहरी वसाइल के अतबार से कि कोई नुकसान मैं नहीं देख रहा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको बहरहाल हौसला दिया कि अगर तुम ईमानी तमाम तकाजे पूरे कर रहे हो तो इन नेमात से इस्तफादा करना ये अजाब इस्तदराज नहीं है। इसलिए कुरान करीम ने वाज़ तकरार के साथ ये बयान किया है कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन काफरीन को खूबसूरत औलादें, खूबसूरत जवजात, खूबसूरत बेहतरीन ज़िंदगी और बड़े बड़े घर, बेहतरीन दुनिया के वसाइल ज़िंदगी अता फरमाता है, क्योंकि दुनिया जन्नतुल काफिर है। लेकिन मोमिन के लिए आए रोज़ एक मुश्किल, एक तरफ से मुश्किल हल हो तो दूसरी तरफ से एक मुश्किल आ जाएगी। कभी मरीज़ हो जाता है, मरीज़ तो इतनी तेज़ी से मरज़ उसकी तरफ आता है कि रवायात में अल्फाज हैं कि जिस तेज़ी से बारिश जब तेज़ हो रही हो तो ऊंची पहाड़ियों की चोटियों से तेज़ी से पानी नीचे आता है, इस तेज़ी से मोमिन की तरफ से अज़्म की तरफ अमराज और दीगर मुश्किल आती हैं। एक तरफ वो सुकून हासिल करने लगता है, दूसरी तरफ से उसे एक और चीज़ मसलन चुभने लग जाती है, तकलीफ़ देने लग जाती है। इसलिए मोमिन की ज़िंदगी सिजनुल मोमिन है, ये मादी दुनिया, ज़ाहरी दुनिया है। इसलिए जिसके लिए ये सिजन ना हो, रेस्टोरेंट जैसी ज़िंदगी हो, अब जहाँ चाहता है वहाँ पे घूम फिर आता है, जैसा खाना चाहता है वैसा खा लेता है, जैसा लोगों के अंदर इज्जत बनाना शोहरत बनाना चाहता है वैसी इज्जत शोहरत बनने लग जाती है, तो वो यकीन कर ले कि ये अजाब इस्तदराज की तरफ उसका कदम बढ़ रहा है। यानी ना इबादत की तरफ लगाव है, ना मानवियात की तरफ लगाव है, ना इल्म और तालीम की तरफ लगाव है। हर चीज़ उसने पहले अंजाम देनी है, लेकिन अल्लाह ने जो सबसे अफजल चीज़ रखी थी, जैसे मसलन कुरानी आयात, अल्लाह ताला आयात पढ़ने की हद को तौफीक नहीं देता, इस तरह अल्लाह ताला बंदों को दुनिया के अंदर मशगूल रखता है कि अल्लाह का कलाम वो ना पढ़े, वो दूसरों का कलाम सुनता रहेगा, दूसरों की बातें सुनता रहेगा, दूसरों से बातें करता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला के लिए नामहरम है वो। اللہ سبحانہ وتعالی سے باتیں نہیں کرے گا، اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا. اللہ کا کلام موجود ہے، 1400 سالوں میں سب سے معتبر ترین نوشتہ وہ یہی ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن کریم، لیکن وہ نہیں کبھی پڑھے گا. وہ پڑھے گا بھی تو اپنی دنیا کو حل کرنے کے لیے، برکت آ جائے، جن بھاگ جائے، یا فلاں فلاں کام ہو جائے، یا ماحول اگر اس کی پر اثر انداز ہو جائے کہ جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، یا ماہ مبارک رمضان میں ایک جگہ بیٹھ گیا، نامحرم اللہ نے اسے بنایا ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال وہ اس دنیا کے اندر جنت و جہنم کا ایک الگ معیار پیش فرما رہا ہے، لیکن اخروی جنت الگ ہے. لہذا اس دنیا کے اندر جنت ویسے ہی معیار مشکوک ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں. اس لیے آسائشیں کسی کے پاس آ کے انتخاب نہیں کرتی کہ یہ مومن ہے یا نہیں، تکلیفیں ضرور بتاتی ہیں. اگر وہ اپنے ایمان کے دائرے میں اور تکالیف میں زیادہ مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں نظر لگ گئی، جن چڑھ گیا، جادو ہو گیا، حتمن و حتمن مومن ہے یہ، حتمن و حتمن. لیکن اس کا برعکس نہیں ہے. اس لیے اپنی تدبیر کریں، خدا بعض کو نعمات سے آزماتا ہے، جیسا کہ صحیح سند حدیث القدسی موجود ہے کہ بعض لوگ فوراً ہی آج کے دور میں کسی کے پاس کچھ نعمتیں آ جائیں، کچھ اموال آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے مال لوٹا ہی ہے، یہ اس نے جو ہے نا غبن کیا، کرپشن کیا، فلاں فلاں کیا ہے. نہیں، خداوند متعال بعض کو نعمات سے آزماتا ہے، لیکن نعمات سے آزمانے میں بھی مومن ہو تو محزون ہوگا، مومن ہو تو ارادتاً اپنی زندگی کو تلخ بنائے گا، اپنے لیے وظیفے کو ایجاد کرے گا، ذمہ داری کو نبھائے گا، وہ اپنی زندگی ایک اجیرن بنائے ہوئے بسر کرے گا. مثلا نیند آنکھوں میں بھری رہے گی، بھوک اس کے لیے اندر سے وہ تڑپتا رہے گا کہ اچھا کھانا کھا لے یا سکون سے کھانا کھا لے، مرض کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ذلت اسے دنیا میں بہت زیادہ اٹھانے پڑے گی، محتاجی کا احساس بہت زیادہ ہوگا. یہ ایمانی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں. اس لیے ممکن ہے گھر بار گاڑی سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی یہ بھلے احساسات ایک بندے میں رہ سکتے ہیں باقی. لہذا اس دنیا کے اعتبار سے آپ نے جنت جہنم کا ایک عنصر ملاحظہ کیا کہ اس دنیا کی جنت اصلاً معیار صالح ہونا نہیں ہے، اور دنیا اخروی جنت کبھی بن بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز ہی قابل فنا ہے، ہر چیز کے اندر تلخی اور غم اور دکھ ہے، اس کی نعمت کے اندر عذاب اور عذاب کے اندر ممکن ہے کہ نعمت اللہ نے پوشیدہ کی ہو، لیکن اخروی وہ اس طرح سے نہیں ہے. اخروی جمن جنت کی ہم جنت کی سے کہا تھا جو نعمات الہیہ کی جگہ قرار پر اس مکان کا نام جنت ہے. لہذا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں پہلی قرآن کریم کی واضح تکرار سے چند آیات ہیں کہ فقط اور فقط مومن وہاں جائے گا، پاکیزہ جائے گا، آلودہ روح نہیں ادھر جائے گی کبھی بھی. ہو نہیں سکتا کہ کوئی اندر سے جرائم کی آلودگی رکھتا اور جنت میں چلا جائے، ناممکن ہے. جیسے ابھی سورہ قلم کی آپ نے آیت بھی پڑھی کہ کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے؟ یہ مسلمین تکلیف میں رہے، اطاعت الہی کی زحمتیں اٹھائیں، اور یہ مجرمین جرم کرتے رہے، دونوں کو ایک جگہ پہ ہم کھڑا کر دیں. پھر فرمایا کہ کیسا تم حکم اللہ پہ لگاتے ہو، کیسی بری سوچ رکھتے ہو، خود اپنے گھر میں انسان یہ کام انجام نہیں دے گا. یعنی اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم یہ تصور نہیں کریں گے مسجد میں میرا بڑا مانوی ایک قسم کا رجحان بن چکا ہے، نماز اور روزے کے ہمراہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اسی وقت شراب کی بوتل بھی میرے ساتھ ہو، وہ شرابی شراب کی بوتل ہی ہے. کیا جنت کے اندر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح ایک شرابی کھڑا ہو جائے گا؟ ایک شہرت کا جو دلدادہ تھا وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جم ہو جائے گا؟ یعنی جسے اس مادی دنیا میں جو فنا کی جگہ ہے، جو زوال کی جگہ ہے، جو عارضی جگہ ہے، اس جگہ پہ آئمہ اطہار علیہ السلام جن افراد کو قبول اپنے ہمراہ نہیں کر رہے، جو ابدی جگہ ہے، ادھر کیسے قبول کر لیں گے؟ اس لیے پہلی خصوصیت آپ نے ملاحظہ کی، جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، جہنم وہ غیر پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. ادھر ایک سوال اگرچہ اٹھے گا کہ پھر گناہگار کہاں جائیں گے، تو گناہگار صاف ہو کے ادھر جائیں گے. یہ ہمارے پاس جہنم میں رحمت الہی کا ایک جمبا پایا جاتا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر آپ کہہ سکتے ہیں جہنم کو، اس کا آپریشن ہو جائے گا، اٹھا کے مرض کو، کیڑے کو باہر پھینکیں گے اور کانٹ چھانٹ خوب اس کی ہوگی، اس کے بعد وہ जन्नत में लाया जाएगा, लेकिन ये भी हिसाब किताब के साथ। अगर कैंसर की हद तक मरज पहुंच चुका है और पता ही नहीं लगा था जिंदगी में, हमने तो उसे दफना दिया नमाज जनाजा पढ़ के, कफन दफन तलकीन शलकीन करके, अब जब उठाया गया तो पता लगा वो कैंसर की तरह मरज फैल गया था। यह तो शिफात अहले बैत अलैहिस्सलाम के काबिल ही नहीं है। लिहाजा इस दुनिया में जिस पर कलमे शिया बोला जाए या मोमिन बोला जाए या मुस्लिम बोला जाए, वो मेयार नहीं है अगले जहान का। अगले जहान का मेयार है क्या साथ हमारा क्या लेके जा रहा है, किस चीज़ को उसने हमारा लेके गया, वो उसका मेयार है। ये हमारे पास एक खसूसियत हुई। खसूसियात इस तरह से हमारे पास कसीर हैं और उसके ऊपर तोलानी गुफ्तगू हो सकती है कि इख्तिताम गुफ्तगू पे मैं औरफा की जानिब से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि बरज़खी जो जन्नत और जहन्नम है, उसकी तलखी और उसकी लज्जत हर दो उसी तरह से है कि जैसे इंसान ख्वाब में महसूस करता है। ख्वाब बरज़ख़ की और कब्र की दुनिया को पहचानने का सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने जरिया करार दिया है। लिहाजा इंसान के वजूद के अंदर जो खसूसियात और औसाफ़ वो ले चुका है, वही उसकी जन्नत और जहन्नम बन जाएंगे। यानी इस हद तक उरफा और मुहद्दिसीन फुकाहा वो कबूल करते हैं, लेकिन इख्तलाफ वहाँ पे आ जाता है कि उखरवी जो है बरज़ख़ या उससे आगे की जो जन्नत या जहन्नम है, फुकहा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि क़यामत की जन्नत मादी भी है, यानी यही वाला मटीरियल मादा है जो आपको इस जिस्म के साथ हिस होता है। फुकहा उरफा और फ़लासफा क्या कहते हैं कि नहीं, जो उखरवी हमारे पास जन्नत और जहन्नम है वो इस तरह की मादी नहीं है, जिस्मानी है लेकिन इस तरह की मादी नहीं है। ये इख्तलाफ हमारे पेश नज़र रह जाता है, जो कि गुज़िश्ता हमारे सिलसिले गुफ्तगू में भी आपकी खिदमत में जिक्र हुआ था। अलबत्ता उरफा किस तरह से जन्नत को तकसीम करते हैं ये हमारे पास महिमा है, क्योंकि कुरान करीम ने मुख्तलिफ नामों के ज़रिए से खसूसियात जिक्र की हैं जन्नत की। जन्नत के 8 दरवाज़ों का तस्करा है, 7 दरवाज़े जहन्नम के जिक्र किए हैं। नेमात तरह तरह की कि जो जन्नत के अंदर मुयस्सर आएंगी वो अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं। जहन्नम के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की तलखियाँ और अजाब और मुशक्क़तें होंगी वो जिक्र की हैं। जान पहचान दोनों की बाकी रहेगी, यानी इस दुनिया में एक इंसान अपनी इज्जत के जाने से जितना घबराता है, उससे कहीं बढ़कर उसे जो एक दगदगा और फिक्र लाहिक होगी वो अगले जहान में है। यानी आप ख्वाब के ज़रिए से ये बात जान सकते हैं कि पहचान, लज्जत, दुख, दर्द, शहवत, मोहब्बत, इनमें से कोई एहसास इंसान से मरने की वजह से दूर नहीं होता। मौत अगर आ जाए तो जिस्म को मौत मिली है, रूह तो बाकी है। इसलिए पहचान एक दूसरे की वो अरवाह को है, दर्द रूह को होता है, लज्जत रूह हासिल करती है, शहवत रूह के अंदर है, गज़ब रूह के अंदर है। लिहाजा इंसान जो इस दुनिया के अंदर रुसवाई से डरता है, सबसे बड़ा अजाब ही रुसवाई होगी उस जहान में। यानी इस दुनिया में बड़ा मोमिन बना फिरता था, अब उसके अमाल सबके सामने आशकार हो रहे हैं, अब उसका दिल चाहेगा कि ज़मीन फटे और मैं अंदर घुस जाऊं, और सब लोगों के सामने आयां हो रहा है, सब लोग उसे जान रहे हैं और सब लोग नफरीन भी कर रहे होंगे, बातें भी सुन रहा है वो। तो ये जो हमारे पास मंजर कशी आती है, इससे ये पता लगता है कि रूह बाकी है, तो रूह के जो खसूसियात हैं वो अगले जहान में भी बाकी हैं। इस दुनिया के अंदर रूह लज्जत को लेती है जिस्म के तवस्सुत से, इस दुनिया के अंदर रूह जो है वो दर्द को महसूस करती है जिस्म के तवस्सुत से, लेकिन अगले जहान में ये वाला जिस्म नहीं है। अब उसकी तशरीह थोड़ी सी तफसीली है, वो अगले किसी और मौके पे आपके सामने पेश की जाएगी। यह तजस्सुम आमाल के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू गुजर चुकी है उसकी पर दिक्कत कीजिए। इख्तिताम पे आएँ, हम उरफा की नज़र में जन्नत की तकसीमें देख लें कि जन्नत और जहन्नम की बकिया खसूसियात और दराजात हम किसी और मौके पे मुलाहिजा करेंगे। उरफा बयान करते हैं जन्नत 3 तरह की है। एक जन्नत आमाल है, एक जन्नत सिफात है और एक जन्नत ज़ात है। लेकिन जहन्नम फ़कत आमाल की सूरत में है, जहन्नम आमाल है। अल्लाह ताला ने कुरान में तकरारन ये बात जिक्र की है कि अल्लाह एक ज़र्रा किसी पे जुल्म करने वाला नहीं है। यानी ये जहन्नम इंसान ने ख़ुद ईजाद की है, सलाहियत अल्लाह ने दी थी, खल्क इंसान ने अपने आमाल के ज़रिए ख़ुद की, अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम में आग में नहीं डाला। वो खुदा ने चूंकि सलाहियत दी थी, इस इनवान से अल्लाह ताला अपनी तरफ नस्बत देता है। लेकिन जन्नत वो खैर है, कुल्लुहू खैर है, तमाम के तमाम खैर है। इसलिए जन्नत बराह रास्त अल्लाह सुबहानो ताला की तरफ से हमारी तरफ आएगी, अगरचे उसकी भी सलाहियत अल्लाह ने हमें दी, लेकिन उसकी अकसाम आप देखिए मुतअद्दिद हैं। लेकिन जहन्नम, तकलीफ़, दर्द, दुख, रंज, कबाहत, कराहत, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान ने अपने आमाल से वजूद में दी हैं। इसलिए हकीकी, अगर ज़ाहरी तौर पे हकीकी खालिक देखना है जहन्नम का, तो वो इंसानी आमाल हैं, उसने अपने आमाल से ये सारी आग भड़काई है और सारी आग लगाई है। लिहाजा यहाँ पे वो सबसे पहले अर्ज़ करते हैं कि एक हमारे पास जन्नत है, जन्नत आमाल, जन्नत सिफात, और तीसरा हमारे पास आ जाता है जन्नत ज़ात। जन्नत आमाल को देखें, जन्नत आमाल वो है कि जहाँ पे आमाल के साथ लोग इस मकाम पे सामना करेंगे नेमात इलाहिया का, यानी जो आमाल ले के आए हैं वही आमाल क्या बन जाएंगे, वो उसके लिए लज्जत बख्श चीज़ें बन जाएंगी। यानी कोई अमल है जो हूर बन जाएगा, कोई अमल है जो गिलमान बन जाएगा, कोई अमल है जो रफ़ीक और अनीस बन जाएगा, कोई एक ऐसा अमल है कि जो महल बन जाएंगे, कोई अमल ले के इंसान आएगा कि जिसकी वो चाहत रखता है लज्जत बख्श चीज़ों की, वो सारी की सारी चीज़ें वो अमल बन रहा है। लिहाजा आमाल को जो वो ले के गया है, ये आमाल वाली जन्नत जो है, ये आमाल के जन्नतुल आमाल कहलाती है। वो आयाते करीमा जिनमें लज्जात का तस्करा है जन्नत के एतबार से, उनका एक बड़ा मजमूआ इसी जन्नतुल आमाल को बयान करती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और जन्नत का जो तसव्वुर कुरान करीम ने पेश किया है, वो जन्नत सिफात है। कि जन्नत सिफात से क्या मुराद है, कि इसकी तरफ भी कई आयात हमारे पास इशारा की गई हैं कि ये जन्नत खुदावंद मुताल ने सिफात की सूरत में आयां की है, यानी सिफात हैं कि जो इस जन्नत के साथ ताबीर की जाएंगी, और ये जन्नत जो है वो इन सिफात का एक आप कह सकते हैं कि नतीजा बन जाएगी। और तीसरी जन्नत उराफा की नज़र में जन्नतुज़ात है। जन्नतुज़ात उससे मुराद क्या है कि अब क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वाइल्ला इनकी तफसीलात आपके सामने जिक्र की जाती कि जन्नतुज़ात से मुराद यह है कि अल्लाह सुबहानो ताला के महजर में उसके जलाल और जमाल का मुशाहिदा करते रहना, यानी खुदा के महजर में हाजिर हो और खुदा के महजर में रह के अल्लाह सुबहानो ताला के हमरा अशिया यानी अल्लाह ताला की जानिब से हकायक का वो एक मुशाहिदा करे। जैसे कुरान की आयत इस तरफ इशारा करती है, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अति सिदक़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर, कि मुत्तकीन जन्नतों और नहर में होंगे, और कहाँ पे होंगे, मकामे सिद्क के ऊपर होंगे, मक़अदे सिद्क, मक़अद कहते हैं बैठने की जगह, सिद्क की जगह पर होंगे, किसके पास, इंदा मलीकिन मुक़तदिर, के मलिक मुक़तदिर यानी जो मालिक है, साहिब कुदरत मालिक है, उसके महजर में ये हस्तियाँ मौजूद होंगी। ये सबसे आला दर्जे की है, यानी आप ये कहें कि अम्बिया व आइमा अलैहिस्सलाम या गिने चुने औलिया जन्नतुज़ात तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अमूमन जो अवामुन्नास की जन्नत होगी वो जन्नतुल आमाल ही है। जन्नतुल आमाल में अक्सर अवामुन्नास जाएंगी कि जो अपने आमाल को लेके जाएंगे और वो आमाल उनके सामने रोशन किए जाएंगे, और वही आमाल उनके सामने मुख्तलिफ तरह के हूर, कसूर, महल और ये चीज़ें बन जाएंगी। इसे जन्नतुल नईम भी कहते हैं। ये हमारे पास मुख्तसर जन्नत का तذکرہ था कि दुनिया की जन्नत का तारुफ कराते कराते हमारा ज़्यादा वक्त लग गया और उसकी खसूसियात चंद हमारे सामने आईं, जबकि बरज़खी जन्नत और जो क़ियामत में जन्नत और दोज़ख या जहन्नम हमें मुयस्सर आएगी उसका तذکرہ इंशाल्लाह किसी और दर्स में करेंगे। और ये दो तकसीमें अपने पेश नज़र रखें कि एक फ़ुकहा मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन की है कि उन्होंने इसी तरीके से जन्नत को बयान किया है कि बरज़खी जो जन्नत जहन्नम और क़ियामत में जन्नत जहन्नम, इसे कहते हैं आखरत में मिलने वाली जन्नत जहन्नम। और एक उरफा ने तकसीम किया, जन्नतुल आमाल है, जन्नतुल सिफात है और जन्नतुल ज़ात है। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही ताहिरीन।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही।